बाजा कुछ लल्लन टॉप सुनते हैं।
खबर आती है कि दो विरोधी नेता मिले, खुशी खुशी फोटो खिंचाई, पर मैं सोचता हूँ कि ये इतना जो मुस्कुरा रहे हैं क्या इमोशंस हैं जो छिपा रहे हैं। पॉलिटिक्स में जनता को फैसले और फरमान सुनाए जाते हैं, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स कोई नहीं बताता। मैं बताता हूँ क्या हुआ उस बैठक में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी की प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि मुलायम सिंह यादव ने मंच पर एक दरोगा को उठाकर पटक दिया। आखिर क्या हुआ कि कांग्रेस को अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग अचानक रोकनी पड़ी। सुनिए ऐसे तमाम पॉलिटिकल किस्से बाजा पर मेरे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ।
एक मौलवी का पोता जो बहुत बड़ा डॉन बना, एक डॉन जो हारमोनियम बजाता था, एक डॉन जो नेता बना और फिर नेता उससे इतने खौफजदा हो गए कि उसे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, और इसके बावजूद वो पिछले 3 दशक से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का बेताज बादशाह है। ये कहानी अल्ताफ की है, जिसके नाम का अर्थ होता है दयालु, लेकिन जिसके ऊपर हजारों कत्लों का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम है कि उसने कराची को कब्रगाह में तब्दील कर दिया है। क्या है अल्ताफ की कहानी, आप जानेंगे ललन टॉप के इस खास किस्से में, क्योंकि इसके बहुत सारे इंडिया एंगल भी हैं। पाकिस्तान को लगता है कि अल्ताफ को रॉ ने बनाया है, पाकिस्तान को लगता है कि अल्ताफ हिंदुस्तान के मिशन कराची, प्लान कराची का हिस्सा है, और पाकिस्तान को ये भी लगता है कि लंदन में बैठा अल्ताफ ब्रिटेन की मदद कर रहा है और कर रहा है हिंदुस्तान की मदद। इसीलिए गिरफ्तारी के बाद उसे फौरन जमानत मिल जाती है और ज़िंदगी बदस्तूर जारी रहती है। भारत बटा, दो हिस्से हुए, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। इस बंटवारे के वक़्त करीब 90 लाख मुसलमान यहाँ से वहाँ गए। नए मुल्क जाकर उन्हें नया नाम मिला, मुहाजिर। ये इनकी कहानी है, मगर कहानी के लिए एक केंद्रीय किरदार चाहिए, किसी का नायक, बहुतों का खलनायक। कराची में सब उसे कायद कहते हैं, खौफ से, इज्जत से। आज का उत्तर प्रदेश तब यूनाइटेड प्रोविंस था, यहीं आगरा में कहीं घर था इस जोड़े का। नाजिर हुसैन स्टेशन मास्टर हुआ करते थे, बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चले गए, उस शहर जहां ज्यादातर विस्थापित यानी मुहाजिर जा रहे थे। यही अर्थ होता है शब्द का। कराची पाकिस्तान की राजधानी और सिंध सूबे की भी। नाजिर को लिखा पढ़ी आती थी, कराची के एक मिल में काम करने लगे। खुर्शीद बेगम ने घर संभाला, घर जो एक मकान था 3 कमरों वाला, कराची के अजीज़ाबाद इलाके में, और यहीं पैदा हुई उनकी वो औलाद जिसके इर्द गिर्द ये कहानी है। 17 सितंबर 1953 को बच्चे का नाम रखा गया अल्ताफ, अल्ताफ यानी दयालु। बच्चे के दादा मौलवी थे और करुणा की बात करते थे, उन्हें लगा पोता भी यही बात आगे बढ़ाएगा। जून 2019 के रोज ब्रेकिंग न्यूज चलती है, पहले ब्रिटेन के टीवी चैनलों पर, फिर पाकिस्तान के। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भड़काऊ भाषण के मामले में अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। अल्ताफ की ब्रिटेन में ये पहली गिरफ्तारी नहीं थी, जून 2014 में भी ऐसा हुआ था, वो तब भी जमानत पर रिहा हो गए थे और इस बार भी। बाकी मामलों की लिस्ट जरूर लंबी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल, वसूली जैसे कई इल्जाम, लेकिन अल्ताफ तो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, तो फिर ब्रिटेन का नागरिक कैसे हो गया? एक कत्ल के चलते इल्ज़ाम अल्ताफ पर लगा, कराची पुलिस ने वारंट निकाला। उस वक्त अल्ताफ हारमोनियम बजा रहा था घर पर, ये शौक बचपन का अब तक खिंचा आया था। एक और भी शौक था, ताकतवर लोगों की, कठमुल्लाओं की मिमिक्री करने का। मिमिक्री, नकल करते हुए मजाक उड़ाना। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को लगता था अल्ताफ कराची में उनकी हस्ती का मजाक उड़ाता है और ये सर्च वारंट, गिरफ्तारी वारंट उनका दाव था। लेकिन अल्ताफ भी पलटवार में माहिर था। उसने बहाना बनाया, सब जगह खबर फैलवा दी कि मैं किडनी के इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूँ, और चला गया विदेश संबंधों की बदौलत। फरार हुआ तो पहुंचा लंदन और वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली। चकलसबाज कहते हैं कि बदले में अल्ताफ ने उस वक्त के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की सरकार से डील की नागरिकता के लिए। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के लिए पाकिस्तान में जासूसी करने की डील अपने नेटवर्क के जरिए। क्या था अल्ताफ का नेटवर्क, कैसे बन गया वो कराची का बेताज बादशाह और एक बड़ी राजनीतिक हस्ती, ये कहानी जितनी अल्ताफ की है उससे कहीं ज्यादा मुहाजिरों की। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना और वहां एक नियम बना कि केंद्र सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा 2% का मुहाजिरों को, जिनकी पाकिस्तान में कुल तादाद मोटामोटी 1.5% थी। मुहाजिरों ने शुक्रिया बोला देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को। लखनऊ के वकील नेता जिन्ना के राइट हैंड मैन, बाद में उनका कत्ल हुआ। अगर आपको पाकिस्तान की सियासत में बहुत दिलचस्पी है तो आपको ललन टॉप की एक सीरीज पढ़नी चाहिए, पाक पॉलिटिक्स। उसमें जिन्ना और लियाकत के रिश्ते, कैसे जिन्ना के बाद लियाकत का कत्ल हुआ, सब पर विस्तार से बताया गया। बहरहाल जिन्ना और लियाकत का दौर जल्द बीत गया और फिर पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा हुआ पंजाबियों का। इसे 2 दशक बाद खत्म किया एक सिंधी ने, जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो केंद्र की सियासत से पहले सिंध में मजबूत हुए। उन्होंने मुहाजिरों के खिलाफ सिंधियों को लामबंद किया। मुहाजिरों की भाषा थी उर्दू, उसी जगह सिंधी को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया। हालांकि बवाल कटा तो उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया, पर इरादे साफ कर दिए थे। फिर भुट्टो PM बन गए बांग्लादेश बनने के बाद। मुहाजिरों को मिलने वाला 2% रिजर्वेशन भुट्टो ने खत्म कर दिया। फिर भुट्टो खुद खत्म हो गए वाया फांसी। अब पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक का मिलिट्री राज आ गया था। जिया जानते थे तख्त संभालना है तो अपने सपोर्ट बेस को खुश रखना होगा, पठान और पंजाबी सपोर्ट बेस। और खुश रखने के लिए पैसा चाहिए, जो कारोबार में था, और कारोबार था कराची में। इसलिए जिया की सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर इन दोनों जमातों के कारोबारी कराची में दाखिल हो गए। इसके अलावा 1979 आते आते, जिया के सत्ता में आते आते अफगानिस्तान में सोवियत संघ आ चुका था, हमला हो चुका था, और सोवियत संघ के जो विरोधी धड़े थे वो जंग में लग गए थे। अमरीका फंडिंग कर रहा था। बड़े पैमाने पर अफगानी मुहाजिर अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे, मुहाजिरों की पुरानी बस्ती कराची की तरफ आ रहे थे। और इससे जो पुराने मुहाजिर थे, यानी 47 वाले, यानी यूपी बिहार से गए उर्दू भाषी मुहाजिर, वो मुस्लिम जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए, उनका डर चरम पर पहुंच गया, क्योंकि उनका एकाधिकार ध्वस्त होने को था। और तब उनके बीच आया अल्ताफ। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। लोग कहते हैं पंजाब पंजाबियों के लिए, सिंध सिंधियों के लिए, बलूचिस्तान बलूचों के लिए और खैबर पख्तूनख्वा पठानों के लिए। मुहाजिरों के लिए क्या जवाब मिलता है? समंदर, दरिया में समा जाएं हमारी बला से, ऐसा आलोचक कहते हैं। कोई जगह नहीं उनके लिए। लेकिन अल्ताफ जगह बना रहा था। 1974 में उसने कराची के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया, स्टूडेंट लीडरी शुरू की, 4 बरस के अंदर अपना संगठन बना लिया, नाम रखा ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अल्ताफ की टोली कराची में मुहाजिरों के घर घर जाती, दिक्कतें पूछती, उनके कमजोर होने के डर को बढ़ाती, फिर अपने साथ आने को कहती। अल्ताफ कहता, इस्लामी कट्टरपंथी मुल्क के नाम पर तुम्हें गुलाम बनाना चाह रहे हैं, हमसे जुड़ो, मजबूत बनो। लोग जुड़ने लगे, अल्ताफ मजबूत बनने लगा, पैसे से भी, रसूख से भी। फिर उसने पैसा देना भी शुरू कर दिया, एम्बुलेंस और शादी ब्याह जैसी चैरिटी शुरू करवाई। 6 साल के भीतर अल्ताफ कराची में समानांतर सत्ता का शुरुआती केंद्र बन गया था। पर यह शुरुआत थी। अब अल्ताफ ने एक संगठन बना लिया था और उसका नाम रखा था मुहाजिर कौमी मूवमेंट। जब ये सब हो रहा था तो कैलेंडर में मार्च का महीना था, 1984 का साल था। अभी बखत बाकी था अल्ताफ के उरूज में कुछ। अल्ताफ ने जो MQM पार्टी बनाई उसके बैनर तले वो तीन मांगे करता। पहली, कम से कम 20 साल से कराची में रह रहे लोगों को ही यहाँ का बाशिंदा माना जाए। दूसरी, बस उन्हें ही वोट देने और जमीन जायदाद की खरीद का हक हो। और तीसरी, सरकार मुहाजिरों को बंदूक रखने का लाइसेंस दे। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, फिर दिया एक लड़की के मरने के चलते। अप्रैल 1985, 20 साल की बुशरा जैदी अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी, बस का इंतजार करती। तभी एक दूसरी तेज रफ्तार बस ने उसे कुचल दिया। बुशरा मर गई। एक्सीडेंट की खबर पूरे शहर में फैल गई। वजह, बुशरा को कुचलने वाला पठान था। कराची के ट्रांसपोर्ट पर उनका कब्जा था और लड़की मुहाजिर थी। अल्ताफ का MQM हरकत में आ गया। पूरे शहर में बसें रोककर तोड़फोड़ शुरू हो गई। बाजार बंद हो गए, सन्नाटा छा गया। उस दिन मुहाजिरों को अरसे बाद अपनी ताकत का एहसास हुआ, ताकत जिसका नाम था MQM। फिर आया 8 अगस्त 1986 का दिन। ये कराची में सबसे ज्यादा रौनक वाला दिन था। और सबसे ज्यादा रौनक क्यों थी? क्योंकि निस्तार पार्क में लाखों की भीड़ जुटी थी। कईयों के हाथ में बंदूक थी, धनाधन हवाई फायरिंग हो रही थी। ये MQM की पहली जनसभा थी। अल्ताफ बोलने के लिए खड़ा हुआ, बोला, 1, 2, 3। रैली में सन्नाटा। ये अल्ताफ का इशारा था चुप होकर सुनने का। अल्ताफ यूं बोलता जैसे सरगम करनी, पेट से हाई नोट पर आवाज उठती। उसको बोलने से ज्यादा चिल्लाना कहा जाएगा। उसमें हिंसा, धमकी, अपमान, अत्याचार सबका जिक्र होता। अल्ताफ बोलता, पहले हम आजादी के लिए लड़े, अब जबकि आजादी मिल चुकी है हमें, तो हम अपने लिए एक मुल्क खोज रहे हैं। जब अल्ताफ एक मुल्क में खड़ा होकर मुल्क खोजने की बात कर रहा था, तब मुल्क क्या कर रहा था? MQM बनने के 3 बरस के भीतर ही पाकिस्तान में पहले बड़े चुनाव आए। म्यूनिसिपैलिटी के ताकत आंकने का अल्ताफ के लिए ये पहला मौका था। उसकी पार्टी ने सिंध के 2 बड़े शहरों कराची और हैदराबाद पर कब्जा कर लिया चुनाव जीत कर। फिर नवंबर 1987 को विजय जुलूस, जो एक रैली में तब्दील हुआ, वहां पर अल्ताफ बोला, मुहाजिरों को VCR नहीं काम आएंगे, रंगीन TV और इस तरह के तमाम ऐशो आराम की चीजें भी काम नहीं आएंगी। ये चीजें हमारा बचाव नहीं कर सकती, मुहाजिरों को अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। इंतजाम माने क्या? हथियार। MQM अपने कार्यकर्ताओं को हथियार बंद करने लगा और हथियारों के सहारे विरोधियों को निपटाना, वसूली करना, एक छत्र राज कायम करना भी चालू हो गया। कराची की हिंसा पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी। आए दिन कर्फ्यू, आए दिन पुलिस से झड़प। इन सब के बीच पाकिस्तान का तानाशाह जियाउल हक मारा गया। नवंबर 1988 में देश में अरसे बाद कायदे से चुनाव हुए और यहीं से अल्ताफ का रसूख पूरे पाकिस्तान पर बरपा। दरअसल इस चुनाव में बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रही। दूसरे नंबर पर आई पाक सेना और ISI के सपोर्ट वाली इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, यानी IJI। नवाज शरीफ तब इसी कुनबे का हिस्सा हुआ करते थे। सेना भुट्टो को पसंद नहीं करती थी। ऐसे में PPP की नजर गई MQM की तरफ, जो सिंध के शहरी इलाकों में खूब सीटें जीतकर तीसरे नंबर की ताकत बन गई थी। अल्ताफ ने सपोर्ट दिया तो बेनजीर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी, पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की। अल्ताफ को लगा लंगड़ी सरकार है, जिसने बैसाखी दी है उसकी सुनी जाएगी। शुरू में सुनी गई, लेकिन फिर पक्का किला कांड हो गया। सिंध और उसके केंद्र कराची पर कब्जे के लिए सत्तारूढ़ PPP और MQM दोनों के बीच टकराव बढ़ गया। बेनजीर ने कर्फ्यू लगवा दिया। ये मई 1990 का वक्त था। सिंध पुलिस ने घर घर तलाशी करने का अभियान शुरू किया, हथियार जब्त करने शुरू कर दिए। इस दौरान पुलिस पहुंची अल्ताफ के कई गढ़ों में से एक हैदराबाद इलाके के पक्का किला में। यहां भीड़ ने पुलिस को अंदर आने से रोका, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, 40 लोग मारे गए, हिंसा और फैल गई, शहर जलने लगे। इस्लामाबाद में बैठे और कभी बेनजीर के बाप जुल्फिकार के खास रहे पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। भुट्टो सरकार को उन्होंने इस बिना पर बर्खास्त कर दिया। हालांकि झगड़ा पहले से चल रहा था बेनजीर का सेना से भी और राष्ट्रपति से भी, लेकिन पक्का किला के कांड ने उन्हें पक्का बहाना दे दिया। फिर चुनाव हुए पाकिस्तान में, MQM फिर तीसरे नंबर पर आया, लेकिन ऊपर के दो पायदान के कब्जेदार बदल गए थे। अब पहले पर थी उद्योगपति नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बेनजीर दूसरे नंबर पर। इस बार नवाज बहुमत से कुछ कम थे, उन्हें फिर अल्ताफ ने सहारा दिया, लेकिन नवाज ने बेनजीर की नज़ीर का पालन किया, MQM को कराची में एक तरफा राज की छूट नहीं दी। अल्ताफ ने पुराना हथकंडा अपनाया, फिर से हिंसा तेज करवा दी, और तब नवाज ने चला अपना ट्रंप कार्ड। एक पुराने मामले में कत्ल के अल्ताफ के खिलाफ वारंट निकलवा दिया गया। अल्ताफ जानता था जेल जाएगा तो रसूख भी जाएगा और जान भी, वो लंदन भाग गया। अल्ताफ ने लंदन से अपना साम्राज्य चलाना शुरू किया। MQM की रैलियों में तब मंच पर अल्ताफ की तस्वीर होती, माइक के सामने फोन रख दिया जाता और अल्ताफ लंदन से भाषण देता। नीचे समर्थक नारे लगाते, नारा 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 ए मुहाजिर, जिए 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 मुहाजिर। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और आखिरी नारा होता ये शेरे कायद आपका नहीं किसी के बाप का। कायद सही शब्द है, कायद मतलब होता है नेता, इसी से बना है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, और अब यही शब्द अल्ताफ के समर्थकों के बीच पॉपुलर हो रहा था। पार्टी के लोग अल्ताफ के लिए एक और टर्म चलाते थे, अल्ताफ हुसैन का मोजिजा, मोजिजा माने चमत्कार। समर्थकों ने उनकी पीठ से छवि बनाने की कोशिश की, कभी टाइल्स पर तो कभी पेड़ की पत्तियों पर उनकी शक्ल उभरने लगी और किस्से घूमने लगे। शक्ल गहरे रंग के धूप के चश्मे, मूछें, मगर कोई और था जिसने मूछें ऐंठ रखी थी, पाकिस्तान की सेना जनरल आसिफ के नेतृत्व में। इसने ऑपरेशन क्लीनअप चलाने का फैसला किया, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसे सपोर्ट किया। जून 1992 से फौज की कई टुकड़ियां कराची में ऑपरेट करने लगी, चुन चुन कर MQM सपोर्टर मारे जाने लगे। पार्टी में भगदड़ मच गई, सांसद विधायक इस्तीफा देकर भूमिगत हो गए। उधर नवाज ने राजनीति गेम भी जारी रखा, MQM में दोफाड़ हो गया, नए ग्रुप ने नाम रखा MQM हकीकी। ये कहते थे हम असली वाले MQM हैं। अल्ताफ तो फिसल गया, बदल गया, लेकिन असली तो होता है वक्त, ये बदला। अप्रैल 1993 में उन्हीं प्रेसिडेंट ने जिन्होंने बेनजीर को बर्खास्त किया था, गुलाम इसहाक खान, इस बार नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। अल्ताफ और उनकी पार्टी के लिए कराची में हमदर्दी थी, सेना गैंगस्टर की तरह काम कर रही थी, उसकी गुंडई के किस्से आम हो रहे थे, लेकिन अल्ताफ को अंदाजा था कि अब की चुनाव में सक्रिय हुए तो सेना बहुत मार मारेगी। तो तय हुआ कि अब जो नेशनल इलेक्शन होगा उसका बायकॉट किया जाए, असेंबली इलेक्शन लड़े और फिर सिंध में PPP के साथ सरकार बनाई। अब नए सिरे से दोस्ती कायम हुई अल्ताफ और बेनजीर के बीच, उनका साझा दुश्मन नवाज बाहर था, विपक्ष में था, लेकिन ये दोस्ती चल नहीं पाई क्योंकि दो भाइयों का कत्ल हो गया। कराची में कत्ल तो लगभग रोज होते थे, इसे यूं समझें कि 1995 में 1700 से भी ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन एक कत्ल था जिसने सबका ध्यान खींचा, सिंध के मुख्यमंत्री सैयद अब्दुल्ला शाह के छोटे भाई का कत्ल। इल्जाम लगाया MQM पर। कुछ रोज बाद सिंध पुलिस ने अल्ताफ के बड़े भाई नाजिर और भतीजे आरिफ को पकड़ा, और उसके कुछ रोज बाद दोनों की सड़क किनारे लाश मिली। अब पुलिस एक एक करके अल्ताफ की पार्टी के लोगों को पकड़ रही थी। बेनजीर भुट्टो की सरकार पर फर्जी एनकाउंटर के इल्जाम लगने लगे, और इसी बिना पर फरवरी 1997 में दूसरी बार उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। एक बार फिर चुनाव हुए और नवाज शरीफ एक बार फिर प्रधानमंत्री बने अल्ताफ के सपोर्ट से। मैजिक चेयर चल रही थी, लगा कि शायद अब हालात बदले। अल्ताफ ने बदला हालात नहीं, महीनों के अंदर अपनी पार्टी का नाम। पहले उनकी पार्टी का नाम MQM था, अब भी MQM रहा, लेकिन जो पहला M था मुहाजिर वाला वो गायब हो गया और उसकी जगह आ गया M4 मुत्तहिदा। मुत्तहिदा यानी कि संगठित, यूनाइटेड। अब MQM था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अल्ताफ की पार्टी दरअसल अब मेन स्ट्रीम पार्टी बनना चाहती थी, तीसरे नंबर पर रहकर खुश नहीं थी, लेकिन हिंसा थी जो उनके साथ चल रही थी। MQM के दूसरे गुट थे जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, और ड्रग्स और हथियारों के धंधे के जरिए पैसा कमाने की होड़ थी जिसे छोड़ने को MQM राजी नहीं था। सवा साल खामोशी रही और फिर हुआ एक कत्ल जिसने कराची को नए सिरे से हिला दिया। ये कत्ल था हकीम सईद, बहुत बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिसर्चर, हमदर्द यूनिवर्सिटी के संस्थापक, उनका कत्ल। अक्टूबर 1998 में कत्ल हुआ। इल्ज़ाम लगा MQM पर, फिर हिंसा भड़की तो गवर्नर रूल लग गया और इसके साथ ही नवाज और अल्ताफ की दोस्ती दूसरी दफा खत्म हो गई। '99 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया। फिर जनरल ने 2002 में चुनाव करवाए पाकिस्तान में। MQM को फिर से अच्छी सीटें आईं। इस दफा उसने केंद्र में दोस्ती की फौज को सपोर्ट करने वाले गठबंधन से। अल्ताफ अब आराम से ऑपरेट कर रहा था लंदन से। हालांकि एक झटका उसे लगा था 4 बरस के भीतर। साल 2006 में उसके संगठन को कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और उसके समर्थकों को कनाडा में एंट्री से बैन कर दिया था। लेकिन अगले बरस कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को लगा अल्ताफ के दिन बेहतर हो रहे हैं। मुशर्रफ सरकार 2007 में पाकिस्तान में एक बिल लेकर आई थी, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। इसमें पुराने राजनीतिक कैदियों को माफी की बात थी, सारे मुकदमों से बरी करने की बात थी। इस लिस्ट में अल्ताफ का भी नाम था। कईयों को लगा अल्ताफ वापस पाकिस्तान आएगा, लेकिन चला गया अल्ताफ नहीं, मुशर्रफ अपनी कुर्सी से, बिल के कुछ महीने के बाद ही। और इस बीच बहुत कुछ हुआ दरअसल। बेनजीर लंदन के निर्वासन से वापस आई, फिर एक रैली में उनका कत्ल हुआ। केंद्र और सिंध में बेनजीर की पार्टी PPP की सरकार बनी। उनके पति, जिनको विरोधी मिस्टर 10% कहते थे, राष्ट्रपति बने। अल्ताफ ने इनसे भी दोस्ती की। एक बरस शांति रही, लेकिन फिर कराची पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। एक चीज़ और हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के मुशर्रफ का लाया वो माफी वाला ऑर्डिनेंस रद्द कर दिया। चीज़ें मंथर गति से चल रही थी, कानूनी दांव पेच थोड़ा बहुत, लेकिन वक्त अपनी रफ्तार से चला। 5 बरस पूरे हुए, बेनजीर के पति की सत्ता खत्म हुई और एक बार फिर से सत्ता में आए अल्ताफ के पुराने दोस्त और दुश्मन नवाज शरीफ। और जो इस बार आए तो नवाज ने तय कर लिया, पंजाबी लॉबी का दबाव कह लीजिए कुछ भी, कि MQM को जड़ से खत्म करना है। MQM के लिए इस बार कराची में शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीनअप राउंड 2, और इसको अंजाम दिया पाकिस्तानी रेंजर्स ने। हजारों समर्थक MQM के अरेस्ट हुए, मारे गए। यूं अंदाजा लगाइए कि अमरीकी अखबारों में भी इसके खूब चर्चे थे। 2015 में अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने MQM के एक सपोर्टर का बयान छापा। उसने बताया कि कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने 10 दिनों तक उसे लकड़ी के एक छोटे डब्बे में बंद रखा। एक दूसरे शख्स ने बताया कि रेंजर्स ने उसको पकड़कर टॉर्चर करते हुए कहा, अगर तेरी शादी हो चुकी है तो हम तुझे नपुंसक बना देंगे, इतना मारेंगे कि तू मर्द नहीं रहेगा। लोग पकड़े जाते, उनके साथ मारपीट होती, उन पर केस दर्ज किए जाते और कई बार केस दर्ज नहीं भी किए जाते और वो मार दिए जाते। इन सब के बीच कईयों से अपराध कबूल करवाए जाते, जो उन्होंने किए वो, जो नहीं किए वो भी। इन सब के चक्कर में MQM का नेटवर्क छिन्न भिन्न होने लगा। MQM को डोनेशन देने वाले कारोबारियों पर सख्ती होने लगी, अगर पैसा दिया तो जेल भेज देंगे। नतीजा ये रहा कि अल्ताफ ने पहली दफा आर्थिक तंगी झेली। उनको मिलने वाला डोनेशन 3/4 घट गया, उनके वसूली के कारोबार रुक गए। एक बार संगठन पैसे से टूटा तो रसूख भी अल्ताफ का जाता रहा। अल्ताफ के सियासी ताबूत में आखिरी कील खुद अल्ताफ ने जड़ी। 22 अगस्त 2016 के दिन, उस दिन MQM सपोर्टर कराची प्रेस क्लब में हड़ताल पर बैठे थे। माइक था जिसके सामने फोन रखा था और उधर से लंदन में बैठा अल्ताफ बोल रहा था, इस पाकिस्तान को हमने, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, ये कितना भी गद्दार बोले हैं, मुझे ये पाकिस्तान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरा ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना इस तहरीक से कोई ताल्लुक है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक अजाब है, पाकिस्तान दुनिया के लिए दहशतगर्दी का एक एपिक सेंटर है, अड्डा है। कौन कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद? पाकिस्तान मुर्दाबाद। कराची के MQM वाले ये सुनकर सन्नाटे में आ गए। अब वो क्या कहकर अल्ताफ का बचाव करते? ये तो पूरे मुल्क को मुर्दाबाद बोल रहा था, खुद तो लंदन में बैठा था, ये सब बोलकर बच सकता था, लेकिन समर्थक तो यहीं पाकिस्तान में थे। सबसे बच जाएं, इससे कैसे पार पाएं? MQM के लोकल नेताओं के पास अल्ताफ के बिना आगे बढ़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। ये MQM माइनस अल्ताफ वाली चीज सेना कब से साकार करना चाहती थी पाकिस्तान की, और ISI भी। अब मौका मुफीद था। पार्टी दो हिस्सों में बट गई। एक फारूक सत्तार के नेतृत्व वाला बना MQM पाकिस्तान, दूसरा अल्ताफ का कहलाया MQM लंदन। अल्ताफ के हाथ से चीजें निकल चुकी थी, उसके नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से सेना और सरकार के निशाने पर थे। अब उन्होंने अल्ताफ को छोड़ दिया। 90 कराची में MQM का हेडक्वार्टर सील कर दिया गया। अल्ताफ और MQM दोनों को भारत का एजेंट करार दिया गया। मीडिया कैंपेन पहले से चल रहा था, अल्ताफ के बयान ने जैसे मुहर लगा दी। 22 अगस्त के भाषण के बाद किसी को आरोपों पर शक नहीं रहा। MQM और अल्ताफ की एंटी पाकिस्तान की छवि पक्की हो चुकी थी। अब कराची में बाकियों के अलावा MQM पाकिस्तान था, और थी एक नई पार्टी, पाक सरजमी पार्टी। और इन्हीं के बीच कराची पर कब्जे की आखिरी लड़ाई लड़ी जाने थी। ये जो तीसरी पार्टी आपको बताई, पाक सरजमी पार्टी, इसके नेता सैयद मुस्तफ़ा कमाल कभी अल्ताफ के चेला हुआ करते थे, MQM के नेता होते थे, MQM के तरफ से कराची के मेयर रहे थे। बाद में पार्टी छोड़कर दुबई चले गए थे, फिर 2016 में लौटे और PSP बना ली। कहते हैं मुहाजिरों को अल्ताफ से अलग करने की स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तानी सेना ने ही उनकी PSP को फंड किया। सेना PSP और MQM पाकिस्तान, अल्ताफ से अलग हुआ गुट, उसे मिलाना भी चाहती थी, लेकिन ये हुआ नहीं। चुनाव आ गए, 2018 के नेशनल असेंबली इलेक्शन। MQM के लिए कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि उसके वोटरों का एक बड़ा हिस्सा अब नए कप्तान इमरान की तरफ जा रहा था, जो मुल्क का कप्तान बनने की राह पर था, और इसके पीछे सेना और ISI का सपोर्ट भी था। वही इमरान जिसे कभी MQM ने कराची में कदम तक न रखने की धमकी और नसीहत दी थी, कराची में राजनीतिक रूप से न सिर्फ दाखिल हो चुका था, बल्कि मजबूत भी नजर आया। कई लोगों ने कहा कि इमरान की पार्टी PTI की कराची में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह बड़ी संख्या में यहाँ आकर बस गए पश्तूनों की मौजूदगी भी रही, लेकिन चुनावी जनादेश की सब जगह अपनी अपनी व्याख्याएं होती। सच्चाई ये थी कि कराची में अब MQM ज़्यादातर अतीत की बात बन चुका था। पाक सेना को लगा कि आखिरकार उसने भारत का कथित कराची प्लान विफल कर दिया। ये पाक सेना की थ्योरी थी कि जैसे भारत ने बांग्लादेश को अलग किया, ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया, नया देश बनाया, वैसे ही भारत अल्ताफ की मदद से कराची को भी पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। पाक खुफिया एजेंसियों को शक था कि अल्ताफ की मदद करता है भारत का खुफिया संगठन रॉ। 1992 तक कराची में भारतीय दूतावास का एक दफ्तर हुआ करता था। ऑपरेशन क्लीन आउट के पहले राउंड के बाद इसे बंद करना पड़ा। पाकिस्तान में कई डिप्लोमेटिक जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान ने जानबूझकर हालात ऐसे कर दिए कि दिल्ली को दूतावास का ये एक्सटेंशन बंद करना पड़ा। क्यों पाकिस्तान ऐसा कर रहा था? क्योंकि उसे लगता था कि जो कराची में भारत के दूतावास है वो MQM की ताकत है, उसको मदद पहुंचाता है। आखिरी में क्या है, एक उम्मीद है अल्ताफ को, लंदन में जमानत पर रिहा अल्ताफ को, कि कभी फिर उसके कराची में नारा लगेगा उसे पुकारने के लिए, वो दूर है तो क्या हुआ, दिलों में है बसा हुआ।
सत्ता के गलियारों और गर्भगृह की कुछ और खुराफातों, कुछ और किस्सों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे मंगलवार के रोज। सुनते रहिए पॉलिटिकल किस्से, सुनते रहिए बाजा।